जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारी जसदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनाचारी मना तेरा बनाचारी जय राधा माधव श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वृतांत समशील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमस्कार श्री हरिदास ठाकुर की जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठ के यहाँ से पढ़ना है यहाँ से श्लोक नहीं आवृत्ति आवृत्ति करना है यहाँ से ठीक है। श्रीमद् भागवतम स्कंधे अध्याय 15 श्लोक संख्या 27। देश कालार्थ युक्तानी हेतापोपशमानी च हरन्ति अस्मरचित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे देशकालार्थयुक्तानि हेतापोपशमानि च हरन्ति अस्मरचित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भवबंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है वह श्रीमद् भगवद गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे इसकी आवश्यकता थी। श्रीमद् भगवद गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई हैं, जिनका संबंध परमेश्वर, जीव, प्रकृति, देश और काल तथा कर्म विधान से है। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं, दोनों का अंतर पूर्ण तथा उसके अंश के अंतर जैसा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतःक्रिया होती रहती है, और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं जो जीव को प्रकृति के अंदर तथा बाहर जकड़ सकती है या मुक्त कर सकती हैं। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है, और इसके आगे प्रबुद्ध करने हेतु श्रीमद् भागवतम में भी उनका विस्तार किया गया है। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत है। इन 5 विषयों में परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत है, लेकिन इनमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर परम नियंता है, जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में हस्तांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार यह भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाती। श्री भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं, और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महत्त्व कहते हैं उसके अंतर्गत जीव अपने को श्री भगवान से अलग समझने की गलती करता है। वैदिक शास्त्रों की पूरी योजना इसी भ्रांत धारणा को निर्मूल करने के निमित्त है, और इस प्रकार जीव को भौतिक पहचान के भ्रम से मुक्त करती है। जब यह भ्रम ज्ञान तथा वैराग्य से समूल नष्ट हो जाता है, तब जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। श्री भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है। भावना यह अंतर भावना का यह अंतर ही दोनों स्वरूपों का श्री भगवान कथाता जीव का अंतर है, अन्यथा श्री भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होती। अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता का समस्त उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये वाला इतना ही लेते हैं, बहुत लंबा है और बहुत सारगर्भित तात्पर्य है, इसको गहराई से छूना, उसका संस्मरण करना तो बहुत गंभीर विषय है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत गंभीर बातों को उल्लेख किया है। तो यहाँ पर और
हरे कृष्णा, तो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज आए हैं। अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज को सब भक्त यहाँ जानते हैं। ये काफी समय से राधा गोपीनाथ टेम्पल से संपर्क में है, क्योंकि इस्कॉन राधा रास बिहारी जू में महाराज ने अपना ब्रह्मचार्य जीवन भी वहीं निकाला है। तो महाराज जी का संपर्क 1984 में हुआ इस्कॉन के भक्तों के साथ में, खास करके परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज और उनके बड़े प्रिय पुत्र प्रिय डिसाइपल जो है गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज के। तो 1984 में जब उनका संपर्क हुआ, उस समय महाराज कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन कॉलेज में पढ़ते पढ़ते महाराज जी ने प्रचार कार्य में हाथ लगाया, गांव गांव प्रचार किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन किया। उसके पश्चात 1987 में उनकी दीक्षा राधा गोविंद महाराज से हुई और 1989 में महाराज जी राधा रास बिहारी मंदिर में फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए। उसके बाद 1989 से अब तक बहुत से महत्वपूर्ण सेवाएं उन्होंने राधा रास बिहारी के चरणों में की। वो पहले संकीर्तन डिपार्टमेंट में थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बाद न्यू भक्ता डायरेक्टर थे और लाइफ मेंबरशिप डिपार्टमेंट थे, उसके बाद टेम्पल कमांडर काफी सालों तक रहे महाराज, और उसके बाद उनका प्रचार कार्य आरंभ हुआ और पूरे भारत भर में वो प्रचार कार्य कर रहे थे। खास करके भागवत सप्ताह में उनका बड़ा नाम है और कुछ साल पहले फिर उनकी इतनी सेवा और उनका इतना डेडिकेशन देखकर इस्कॉन के भक्तों ने उनको संन्यास में रिकमेंड किया और बाद में महाराज असीम कृष्ण प्रभु से अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज बन गए। अभी महाराज पूरे देश में तो प्रचार करते ही है, लेकिन बाहर भी जाते हैं, अब्रॉड प्रचार करते हैं, केनिया में गए थे, मॉरिशियस में गए थे, साउथ अमेरिका भी गए थे, सूरीनाम ट्रिनिडाड गयाना में। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज यहाँ पर हमारे मंदिर में आए हैं। तो आइए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं तीन बार हरी बोल बोलकर। हरी बोल, हरी बोल। धन्यवाद महाराज।
थैंक यू, धन्यवाद। बलदेव प्रभु को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बड़ा स्नेह देते हैं जब भी मिलते हैं, और उनकी बड़ी कृपा है बलदेव प्रभु की। तो आप सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम अर्पित है और आशीर्वाद की आकांक्षा है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। तो श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का इसमें अर्जुन उद्घाटित किए हैं। अर्जुन भगवान के धाम से चले जाने के बाद उनको अनुभव हो रहा था कि भगवान किस तरह हमारे साथ कितना स्नेहपूर्ण औदार्य व्यवहार किए, जो युद्ध में सारथी बने, उनका अंगरक्षक का भी कार्य किए, सोने पर रखवाली भी करते थे। तो उन सारी क्रियाओं को याद करते हुए विशेष करके कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान भगवान दिए, उस ज्ञान की अनुभूति करते हुए याद कर रहे हैं कि भगवान ने कितना बड़ा सौहार्द प्रकट किया है। और मानव समाज के लिए भगवद गीता एक बहुत बड़ा उपहार है, मैचलेस गिफ्ट है, अनुपम उपहार है। बद्ध जीव के अज्ञान को, भ्रम को, मोह को दूर करने के लिए, भौतिक आसक्ति को छिन्न भिन्न करने के लिए भगवद गीता एक बहुत बड़ा अस्त्र है, जिससे हम माया के बंधनों को काट सकते हैं। यह ज्ञान की तलवार है, रूपा जी ने लिखा ना, ज्ञान की तलवार। तो ज्ञान की तलवार क्या है? भगवद गीता है। इस भगवद गीता रूपी ज्ञान की तलवार से हम भौतिक आसक्तियों को काट सकते हैं और अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान सकते हैं। तो एक कवि ने कहा कि हमें दो में से चुनाव करना है, तलवार चाहिए कि कलम चाहिए। जैसे तलवार के बल पर साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, किए भी गए हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं होता है। लेकिन कलम के बल पर जो साम्राज्य अर्जित होता है वो युग युगांतर रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी उर्वर लेखनी से पूरे विश्व पर साम्राज्य स्थापित किया है और कुबेर से भी अधिक ज्यादा धन प्राप्त किए हैं। विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी, जिनका हर शहर में, गांव में उनका नाम है, उनका जयघोष होता है, उनका आवास है प्रभुपाद पर, बड़े बड़े शहरों में उनका आलिशान प्रभुपाद क्वार्टर है। तो गीता ज्ञान के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व पर साम्राज्य स्थापित किया कृष्ण भावना का। विश्व में ऐसा कोई धनी व्यक्ति नहीं है जिसका हर जगह जयघोष होता है या हर जगह जिसके लिए आवास बना है। पूरे विश्व में प्राय अब तो गांव गांव तक भी फैल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कैसे चमत्कार किया? तो कलम के बल पर। एक बार हम गए थे इधर कलम बोली ना, कलम बोली, तो वहाँ क्लास था खार घर के आगे, है ना, कलम बोली। तो मैं बोला कलम बोली नाम क्यों रखा गया है? तो मैं उसको थोड़ा स्पेकुलेट किया कि वास्तव में ठीक है, कलम ही बोलती है, बोलती तो कलम ही है। श्री प्रभुपाद जी कलम कितनी बोली है कि जिसको लोग सुन करके, पढ़ करके अपना जीवन सुधार रहे हैं। तो अच्छा नाम है कलम बोली। अब मराठी में क्या अर्थ होता है नहीं मालूम, लेकिन कलम बोली हमने। तो एक कवि ने कहा कि दो में से क्या चाहिए, कलम या की तलवार? कलम है और तलवार है, आपको क्या चाहिए? कहा कि कलम ज्यादा शक्तिशाली है, हम तलवार से कितना किसी को कर सकते हैं। तलवार के बल पर जो समाज बहुत क्षणिक होता है, इसलिए दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार? कवि कहता है कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, आ दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, वो दिल और दिमाग में भी आग लगा देती है, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो प्रभुपाद जी की लेखनी जो है वो पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसको पढ़ करके लोग भक्त बन रहे हैं, अपने जीवन को असली मार्ग पर ला रहे हैं। तो भगवद गीता जो है जीव को अनर्थों से, जन जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के मोह को, भ्रम को, अज्ञान को दूर करती है। तो अर्जुन अनुभव कर रहे थे कि जिस भगवान ने मुझे इतना प्रेम दिया है, हमारे लिए सारथी बन गए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवद गीता का उपदेश दिए, तो भगवद गीता भगवान की साक्षात अनुभूति कराता है। भगवान के जाने के बाद भी अर्जुन भगवद गीता के माध्यम से भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर रहे थे। भगवद गीता ऐसे भी भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, और भगवद गीता जहाँ है वहाँ भगवान की अनुभूति हम कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, नेत्र से पढ़ करके अपने हृदय में उनको उतार सकते हैं। दर्शन पठन दर्शनम पठनम स्मरणम, भगवद गीता का दर्शन करना भी बहुत लाभ है। कोई पढ़ाने तो रखकर दर्शन कर सकता है, उसके आख्यानों का स्मरण कर सकता है, और पठन तो जो पढ़े लिखे लोग हैं पठन करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है तो स्मरण कर सकते हैं। भगवद गीता के चित्र को देखकर लोग स्मरण करें, कैसे रंगनाथ मंदिर में व्यक्ति भगवद गीता के पृष्ठ ऊपरी पृष्ठ पर देखा कि अर्जुन के रथ को भगवान हाँक रहे हैं, इसका स्मरण करना किया, पढ़ा लिखा नहीं था व्यक्ति, स्मरण यही कर रहा था भगवान कितने कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं कि अपने भक्त के लिए सारथी बन गए, कैरियर ड्राइवर बन गए, भगवान अपने भक्त के लिए नौकर भी बन जाते हैं। तो इस भाव को स्मरण करके वो व्यक्ति भगवान की उपस्थिति अपने समक्ष अपने हृदय में अपने मनोभाव में अनुभव कर रहा था। तो भगवद गीता के महिमा को अर्जुन अनुभव कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। श्री भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्री भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने श्री भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। जो भगवान की उपस्थिति में अर्जुन ने जो लाभ उठाया था वही लाभ हम भगवद गीता के माध्यम से उठा सकते हैं। कोई भी मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने श्री भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। वो अच्छी बात है। तो भगवद गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। चाणक्य पंडित तो लिखते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है और इसमें भी बहुत विघ्न बाधाएं हैं, तो उसमें हमें केवल भगवद गीता पढ़ लेना चाहिए। समय के अभाव में अत्यधिक सांसारिक व्यस्तता होते हुए हमें क्या करना चाहिए, तो केवल भगवद गीता पढ़ लेना चाहिए। अनंत शास्त्रम बहुला से विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र हैं, अनेक किताबें हैं, अनेक विज्ञान हैं, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, अनेक विद्वानों द्वारा रचित कथाएं हैं, किताबें हैं। उसमें भी विज्ञान में जैसे कंप्यूटर साइंस है, मिलिट्री साइंस है, म्यूजिक साइंस है, म्यूजिक में भी कई इंस्ट्रूमेंट हैं। केवल मृदंग सीखने में ही कितना वर्ष लग जाता है, हारमोनिया सीखने पूरा जीवन बीत जाता है फिर भी यानी परफेक्ट नहीं हो पाता है। अनेक विद्याएं हैं, तो कितना हम कम समय में कितना हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए भगवद गीता आदमी पढ़ ले तो उसका जीवन जो है आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो सकता है। इसलिए पंच पुराण गीता महात्म में कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्नय शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रता। और अधिक शास्त्र विस्तार की क्या आवश्यकता है, केवल गीता हमें पढ़ लेना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्नय शास्त्र विस्तरई, शास्त्र विस्तार करने क्या आवश्यकता है, केवल गीता पढ़ लीजिए। जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निःसृत गंगा की तरह, गंगा से भी अधिक पावनी है, से गंगा भगवान के चरण से निःसृत होकर के जगत को पावन करती है। दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटाओत, गंगा का दर्शन मज्जन पान त्रिताप को मिटाता है, तापो त्रयोन्मूलनम। लेकिन वास्तविक रूप में समूल त्रेताप को भगवद गीता ही करती है। गीता यद्यपि भगवान के मुखारविंद से निश्रित हुई है और गंगा भगवान के चरण कमलों से भगवान के चरण और मुख में कोई अंतर नहीं है, सर्वांग भगवान दिव्य हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान नख शिख दिव्य हैं, नख और शिख उनमें कोई अंतर नहीं है, भगवान का हर अंग दिव्य है, माधुर्यमय है। नख देखिए चाहे शिख में जाइए, जहां भी दृष्टि जाती वहीं उलझ जाती है। भगवान के हर अंग जो है बहुत आकर्षक, उसमें आकर्षण है, बहुत अट्रैक्शन है। चिताकर्षक नहीं कौन अव्यय, नेत्र प्रतिवस्तु पर हैं उलझते। चिताकर्षक भगवान का ऐसा कौन पार्ट सब लिम्ब, उनके शरीर का ऐसा कौन अंग है जो चित्त को आकर्षित नहीं करता है। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, इस्कॉन का प्रसिद्ध स्लोगन है, तिचक में लिखते हैं लोग कि मेरा हृदय वृंदावन में खो गया। आई लॉस्ट माई हार्ट कहां पर, तो वृंदावन में। कोई बोल गया, अरे ये कैसे हो सकता है, आप पर्स गुम हो सकता है, मोबाइल गुम हो सकता है, बंदर चश्मा ले सकते हैं लेकिन हृदय कैसे चोरी हो सके। लेकिन भगवान हृदय को भी चुरा लेते हैं, चित्त चोर हैं। कितना सर्वाकर्षक हैं कि जहां भी हमारी दृष्टि जाती है जिस अंग पर वहीं उलझ जाती है। चिताकर्षक नहीं कौन अव्यय, नेत्र प्रतिवस्तु पर हैं उलझते। विधु बदन पे नयन पे चरण पे कंज कर पे हरित बांसुरी पे। भगवान का जो सुंदर श्यामला मुखमंडल है, विधु बदन पे नयन पे उनके नेत्र भी, उनके नेत्र हमेशा चलायमान रहते हैं, आंदोलित रहते हैं। जैसे नेत्र सुखंजन, जैसे एक पक्षी होते हैं उनके बच्चे जैसे बहुत चंचल होते हैं, वैसे उनके नेत्र हमेशा चलायमान रहते हैं, चंचल। तो उनके नेत्र पर भी, उनके मुखमंडल पर जहां दृष्टि जाती है, विधु बदन पे नयन पे चरण पे कंज कर पे हरित बांसुरी पे, भगवान का हर अंग जो है खींच लेता है। ऐसे भगवान का चाहे चरण हो चाहे मुखारविंद हो कोई अंतर नहीं है। गंगा चरणों से निकल कर जगत को पावनी करती हैं और भगवद गीता भगवान के, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता, भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से भगवद गीता निर्झरित होकर के संसारी लोगों के ताप को समूल नष्ट करती है। तापो त्रयो नमूलम श्रीमद भागवते महामुनिकृते किमुवा परेरिश्वर सद्यो हृद्य वरुद्ध ते अत्कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। भगवद गीता श्रीमद भागवतम को अगर कोई पढ़ने के लिए सोचता है तभी भगवान उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्ध ते अत्कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। भगवद गीता भागवत ये जो सद साहित्य है इसको अगर कोई पढ़ता है या पढ़ने की इच्छा भी उसके हृदय में जागृत होती है, लौल्यम पढ़ने की उसमें लौल्यता जागृत होती है तभी भगवान उसके हृदय में बंदी हो जाते। सद्य हृदय अवरुद्ध उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान। धर्म प्रोजित कैत्रवत्र परमो निजम शराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापो त्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किमुवा परेरिश्वर। तो ऐसे श्रीमद भगवद गीता की महिमा इतनी है कि उसकी महिमा को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। अतएव श्रीमद भगवद गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने हेतु है। श्रीमद भगवद गीता अनेक कष्टों को, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार जन्म लेना इसका अंत कर देती, मृत्यु ही पराजित हो जाती है। प्रभुपाद ने लिखा है मृत्यु की पराजय, हम मृत्यु को कैसे पराजित कर सकते हैं, तो गीता के द्वारा। अतः श्रीमद् भगवद गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने हेतु है, और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था। तो भगवद गीता की महिमा को इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए। जो लोग भी इस संसार के ताप से शांति चाहना चाह रहे हैं, इस ताप से बचना चाहते हैं, तो भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए। कैसे अर्जुन आश्रय लिए, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादन मया च्युत। ये भगवद गीता अर्जुन सुने तो अपना रियलाइजेशन प्रस्तुत किए, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादन मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवद गीता अपने कर्म को, हमारे कर्म को सिखाती है, हमें अपने कर्म के पथ पर आरूढ़ करना सिखाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कुछ करने के लिए इस संसार में, हमारा जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह करने के लिए भगवद गीता हमें एक आलोक प्रकाशित करती है, ये ज्ञान का प्रकाश देती है कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो भगवद गीता के माध्यम से हम कर्म के प्रति सचेष्ट हो सकते हैं। ज्यादातर लोग कर्तव्य विहीन हैं लोग, या कर्तव्य के प्रति लापरवाही है। समाज में हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य सही सही करने लगे ईमानदारी के साथ, तो इतना अनाचार भ्रष्टाचार क्यों होगा, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होगा। हर व्यक्ति अपना कार्य नहीं करता है और दूसरे कार्य में टांग लगाता है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया। तो हम अपना देखेंगे, अपने कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करेंगे तो दूसरा भी उससे प्रभावित होगा, ठीक है। आदमी को अपना कार्य में अच्छा से लगे रहना चाहिए। ये भगवद गीता के द्वारा हम पकड़ सकते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, इसीलिए पहले हिंदी वर्णमाला में क्या पढ़ाया जाता है, पहले हम क पढ़ते हैं, क ख ग घ ङ। क मतलब कुछ करो, कुछ काम करना है, क पहले ना सिखाया जाता है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। इस संसार में तो हमारे लिए भगवान ने कुछ निर्दिष्ट कार्य दिया है, कुछ निर्धारित के ये करना है, इसलिए क कुछ करिए। तब ख मतलब तब खाना चाहिए, नहीं तो फास्टिंग करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते ना कि नो मंगलारती नो प्रसादम, अगर मंगला आरती नहीं किए हैं, जप नहीं किए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं किए तो फास्टिंग था। नो मंगला आरती नो प्रसादम मतलब कम मतलब कुछ करना है, तब ख मतलब खाना है। इसका बड़ा साइंस है, ऐसे नहीं बनाया गया है पहले क। कोई कह सकता है पहले क क्यों, ख क्यों नहीं, कोई कहेगा ग पहले क्यों नहीं आया या घ क्यों नहीं आया। पहले कह इसलिए कि कुछ करो, इस संसार में हमें कुछ करना चाहिए। रूपा जी कहे कि आश्रम जो है लेजी क्रेजी के लिए नहीं है, चलो अब बेड लेकर मंदिर में जाएंगे सोते रहेंगे, घंटी बजेगी तो खाने के लिए जाएंगे, नहीं उसने कुछ काम करना है। अर्जुन को भी भगवान काम में लगाए, अर्जुन काम अपना छोड़ करके संन्यास लेना चाहते थे कि चलो जिम्मेवारी से मुक्त होकर भिक्षु वृत्ति स्वीकार करके भीख मांगकर भोजन करें। अर्जुन का कार्य था युद्ध करना, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का कर्तव्य है चोर बदमाश उचक्कों से समाज की रक्षा करना। क्षत्रिय मिलिट्री मैन थे, लेकिन वो ने कर्तव्य को नहीं करना चाहते थे, बोले नहीं हम संन्यास ले लेंगे, जंगल में भजन करेंगे। भगवान के नहीं, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हारा जो कार्य है, जैसे जितने भी मिलिट्री में सोल्जर हैं बॉर्डर में, सब राइफल फेंक कर संन्यास ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत उथल पुथल मच जाएगा। जितने चाइना बॉर्डर में, पाकिस्तान के बॉर्डर में, बांग्लादेश के बॉर्डर में जितने भी सोल्जर हैं, सब राइफल के जगह त्रिदंड ले लेंगे तो पूरा अशांति हो जाएगी, हम यहाँ बैठकर भजन नहीं कर पाएंगे। परम पूज्य राधाकृष्ण महाराज कहते हैं कि हम लोग यहाँ भजन कर रहे हैं पीसफुली, इसलिए कि हमारे सैनिक सीमा में बर्फबारी में भी, बारिश में भी खड़े रहते हैं, पहरू पहरे पे खड़ा। जो पहरू है, जो पहरेदार सिपाही हैं, सीमा पर रात दिन खड़े हैं, पहरा करें तब न हम यहाँ बैठकर जब करें, वो सब भाग जाएंगे छोड़ करके, तो समाज में सारे आतंकवादी हो जाएंगे, मार काट लूटपाट मच जाएगी। तो इसी तरह भगवान कहे कि अगर तुम संन्यास ले लोगे तो समाज में उथल पुथल हो जाएगा, तुम्हारा काम है रक्षा करना। समाज में इसीलिए कुछ रक्षक लोग होते हैं, रक्षा करने के लिए कुछ लोग होते हैं, आर्मी विभाग होता है, पुलिस चौकी पर लिखा रहता है सज्जन रक्षणाय खल निग्रहाय, महाराष्ट्र के चौकियों पर लिखा रहता है सज्जन रक्षणाय खल निग्रहाय। समाज में दो प्रवृत्ति, आसुरी दैवी प्रवृत्ति, सज्जन और दुर्जन रहेंगे हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए आर्मी विभाग है, क्षत्रिय विभाग है। तो अर्जुन को भगवत गीता के द्वारा अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया, तब कहे नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तब उनको लगे नहीं सही में हमारा कर्तव्य ये है, हमारा कर्तव्य है आतताइयों से, समाज में जो अवांछनीय प्रवृत्ति के लोग हैं उनका दमन करना, तभी समाज व्यवस्थित होगा। वैदिक शास्त्रों की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा को निर्मूल करने के निमित्त है, और इस प्रकार जीव को भौतिक पहचान के भ्रम से मुक्त करती है। जब यह भ्रम ज्ञान तथा वैराग्य से समूल नष्ट हो जाता है, तब जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। तब जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। श्री भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मन चाही इच्छा है। तो भगवान में और जीव में अंतर यही कि जीव हमेशा भगवान की इच्छाओं पर आश्रित रहता है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है, हम जो चाहें वो नहीं हो पाता है। मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, क्या सफल होती है? रूपाजी लिखते हैं कि एक नेता पंचवर्षीय योजना बनाए और कुछ समय में बम ब्लास्ट में मर गए। तो हम योजनाएं बना सकते हैं, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं, लेकिन सफलता जो है भगवान के हाथ में है। भगवान चाहे तो हम उसमें सफल हो सकते हैं। तो जीव में ब्रह्म में यही अंतर है कि जीव भी इच्छा करता है, वो भी करता है, भोक्ता है, लेकिन वास्तविक कर्ता भगवान है। भगवान हमें करने की शक्ति देते हैं, वैसा विवेक देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, जीव भी कुछ मायने में क्रिएशन करता है, कुछ उत्पन्न करता है, लेकिन वो भी भगवान के ऊपर ही अवलंबित रहता है। जीव भी भोगता है, लेकिन भगवान परम भोगता है। हम भोगने की इच्छा करते हैं, कभी कभी इच्छा होते भी हम भोग नहीं पाते हैं। जैसे भूख नहीं है तो आप खा नहीं सकते हैं, खाने के लिए बहुत है लेकिन डायबिटीज हो गया है तो मालपुआ नहीं खा सकते हैं, डॉक्टर बोलेगा केवल बॉइल सब्जी खाना। मखमली से जो है लेकिन नींद नहीं है, गोली लेने पर भी नींद नहीं आता, हम कहाँ भोगता है। वास्तव में जीव भोगता है नहीं और न भोग सकता है। खूब आपका आलिशान महल है, मलमली गद्दा है, लेकिन गोली खाने पर भी नींद नहीं आती है, सारी सुविधाएं हैं आपको पास, बहुत कुछ है, लेकिन कितना खा सकते हैं। कोई राजा है कितना खा सकता है, कितने घर में रह सकता है, एक बेड पर ही सो सकता है, हजार फ्लैट है लेकिन उस किसी एक ही रूम में ना 3.5 हाथ का जगह एक्वायर कर सकता है, कितना कर सकते हैं। और भगवान एक साथ हर जगह विराजमान हो सकते हैं, एक पग में पूरी भूमि को नाप सकते हैं, एक साथ भगवान हर जगह व्याप्त हैं, विभु व्यापकम, हर जगह व्याप्त। इसलिए भगवान ही वास्तव में भोगता है, हम कितना भोग सकते हैं। हम खाएंगे भी तो पचा नहीं सकते हैं, पचाने के लिए भगवान कहते हैं तुम्हारा भोजन मैं पचाता हूँ। हम जो खाते हैं वो भोजन भी भगवान पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम पानम पानम समाजिकम पचामन्नम चतुर्विधम। भगवान हमारा भोजन पचाते हैं, हम केवल खा लेते हैं, कभी के अनपच हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, तो पचाने की ही क्षमता हमारे पास नहीं, वो भी भगवान पचाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। वास्तव में हम करता भी नहीं है, न हम करता है न भोगता है, केवल भगवान की कृपा से कुछ कर रहे हैं। तो भगवत गीता वास्तव में इस संसारी कष्टों से जो लोग दुखी हैं, जो आह व्यामोह आह में बोलते हैं आह आह, संसार में आदमी आह ही भरता है आह में, वैसे लोगों के लिए भगवत गीता जो है अमृत है। तो कथामृतम तप्त जीवनम, संसार में तप्त लोगों के लिए कथा अमृत की तरह है। इसलिए भगवत गीता थोड़ा भी अगर कोई पढ़ लिया है, आदि शंकराचार्य लिखते हैं भगवत गीता किंचित धीता और गंगा जल लो कणिका पीता। भगवत गीता का थोड़ा भी किंचित भी अगर कोई पठन पाठन कर लिया है और गंगा का एक कण भी पी लिया है और एक बार भी भगवान का स्मरण कर लिया है तो यमराज उसकी चर्चा नहीं करते हैं। यस यम किम कुरते चर्चा, यमराज के कष्ट से मुक्त हो जाता है, यमराज के भवपात से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता किंचित धीता, भगवत गीता पढ़ लेने से ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। या गंगा जल लो कणिका पीता, गंगा जल क्या है, चरणामृत है। हम चरणामृत पीते हैं ना, काल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पादु दुखम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो गंगा जल भगवान के चरण से डायरेक्ट निकलती है तो चरणामृत है। गंगा जल पीने से अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम। वैसे गीता भी थोड़ा भी गीता का अगर कोई किंचित, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लो कणिका पीता है। आगे कैसे है, हाँ लाइन में भूल रहा हूँ, यश यम किम कुरते चर्चा, फिर यमराज को हिम्मत नहीं होती है उसकी चर्चा करे, बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ यमराज, यमराज के न्याय से परे हो जाता है। तो हमें भव बंधन से यमराज के पास से मुक्त होना है तो भगवत गीता, भगवत गीता पढ़ने से बच जाता है, यमराज के पास से बच जाता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है, समय हो गया ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है? प्रश्न इसमें तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में सब शंकाओं को समाधान कर दिए हैं। ठीक है, प्रभु जी प्रश्नाचार्य हैं। ये प्रश्न करते ही हैं प्राय।
हरे कृष्ण।
अच्छा है।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत 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 अच्छा आपने बताया है। हमारा प्रश्न यह है कि जैसा भगवद गीता पढ़ेंगे तो इस संसार का पापों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं जो भगवद गीता भागवतम का जिन्होंने आश्रय लिया है उनको जो है कि भौतिक व्याधि और यातना बहुत होती है, ऐसा क्यों होता है?
जब हीरा खान से निकलता है ना तो उसको बहुत तराशा जाता है, बहुत घिसा जाता है, तब उसका कीमत होता है। पीसा जाता जब भिक्षु दंड, झड़ती रस की धारा अखंड, मेहंदी में जैसे लाली है वर्तिका बीच उजियाली है। मेहंदी को पीसा जाता है तब ना उसकी लालिमा प्रकट होती है, और इच्छु गन्ने को पेरा जाता है तब उससे रस निकलता है, उसका मिठास निकलता है। उसी तरह कोई बहुत तप करके संसारी कष्टों को झेल करके जब आगे बढ़ता है तब उसकी महिमा प्रकट होती है। ऐसे बिना तपस्या किए बिना संघर्ष किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो भौतिक कष्ट जिसके ऊपर जितना आता है वो समझिए कि उतना ही आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। कहना कि अनुग्रह अनुग्रहणामी कैसे है, अस्याहम अनुग्रहणामी हरिष्य तदनम सुनई। कुंती महारानी को कितना संघर्ष करना पड़ा, उसी तरह विघ्न बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ना है, इससे घबराना नहीं है। संसारी बाधाएं तो आती हैं, भक्ति में जब कोई आगे बढ़ते बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं, शारीरिक बीमारियां भी आती हैं, अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं। जैसे गंगा गोमुख से चलती है अनेक अवरोध हैं, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, बड़े बड़े खाई आते, लेकिन उसको पाटते हुए गंगा अपने गंतव्य में जाते हैं। तो आध्यात्मिक पथ पर भी अनेक बाधाएं आती हैं। ये गौड़ीय वैष्णव है विनोद बिहारी बाबू, तो किताब लिखे भक्ति क्रम विकास की बाधाएं। भक्ति क्रम विकास, भक्ति का जब क्रमिक विकास होने लगता है तो बाधाएं भी वो भी ऊपर आती हैं। जैसे कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके इर्द गिर्द में अन्य पौधे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति इतना बहुत आसानी से पार हो जाएंगे, उसमें अनेक अवरोध आएंगे, अनेक शारीरिक बीमारियां आएंगी, अनेक समस्याएं आएंगी, तब न कहीं ये होगा। भक्ति करना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, खजूर का कोई पेड़ बहुत लंबा होता है, फल भी बहुत ऊपर होता है। भक्ति करना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल रसना चके, गिरे तो चकना चूर। तो भक्ति इतना आसान नहीं है, उसमें बाधाएं आएंगी ही। भक्ति क्रम विकास की बाधाएं, अनेक बाधाएं आएंगी ही, ज्यादा बाधाएं। लोग कहते हैं कि अरे बाहर के लोग खाते पीते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, भक्त लोग ज्यादा बीमार होते हैं, भक्त लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं। उनका सफाई हो रहा है, तरासे जा रहे हैं, उनका कटाई पिसाई हो रहा है, उनका जितना प्रारब्ध है उसको निकाला जा रहा है, इसलिए हो रहा है। अच्छा है जो लोग वर्तमान में ही अपने प्रारब्ध को झेल लेते हैं, अच्छा ना है। भक्त लोग इसी जन्म में ही अपने प्रारब्ध को झेल लेते हैं।
भगवद गीता पढ़ते हैं या भक्ति करते हैं तो जो हमारे परिवार के या पूर्वज हैं जो दुनिया में नहीं, उनको भी लाभ होता है।
हाँ, भगवद गीता अगर कोई पढ़ता है, रखता भी है घर में, तो उसके पितरों को भी लाभ मिलता है। जो जो पूर्वज दादा दादी नाना नानी जो शरीर वर्तमान में यहाँ नहीं है, उनका भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई घर में भगवद गीता भागवत रखे तो पितरों को बहुत लाभ मिलता है। तो वर्णन है महात्मा में, एक महाराष्ट्र में एक लेडीज थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो संकीर्तन बस गई थी तो भगवद गीता ले रही थी, एक एक रुपये संचय करके बहुत पैसा जमा की थी महाराष्ट्र के गांव में। तो संकीर्तन बस पार्टी में गई तो बहुत पैसे थे, एक दो रुपये किसी के। तो भगवद गीता ली तो भक्त बोले आप पढ़ते? बोले नहीं, मैं पढ़ती नहीं हूँ। वो पढ़ना नहीं जानती थी लेकिन भगवद गीता का महिमा जानते थे कि रखना भी भक्ति है। तो रखने के लिए और देखने के लिए तो बहुत लोग, हम लोग के परिवार में हम लोग की दादी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन रामायण कोई घर से ले जाता था तुरंत मंगा के लाती थी, कपड़े में बांध करके रखते थे, अगरबत्ती दिखाते थे। पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन रामायण को घर से बाहर कोई पढ़ने के लिए दिए तो तुरंत फिर मंगाती थी और रखती थी, अगरबत्ती दिखाती थी। ये भी बहुत अच्छा बात है। आप पढ़ेंगे तो आपके घर वालों को भी होगा, आप भक्ति करेंगे तो आपके माता पिता को भी लाभ मिलेगा। कैसे? ध्रुव महाराज भक्ति किए तो उनके माँ के लिए भी विमान आया, माँ पहले ही विमान से जा रही थी। आपके भक्ति करने से आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी को दीजिए।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रवचन। मेरा प्रश्न था, आपने कहा था कि समाज में हर किसी का कुछ न कुछ कर्तव्य है और तभी जाके समाज अच्छे से चलता है, तो एक भक्त और साधक के रूप में हमारे क्या प्रमुख कर्तव्य हैं उसके पर?
जब भक्त बन गया तो उसका कर्तव्य भक्ति करना ही है ना। गृहस्थ है, किसान है, खेती करना, शिक्षक है, शिक्षा देना, व्यवसायी है, व्यवसाय करना, और जो भक्त है उनका भक्ति करना। अभी हम मंदिर में आ गए तो हमारा कर्तव्य ही नहीं है भक्ति सेवा करना, आश्रम में रह करके आश्रम के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है, हमारा ही कर्तव्य है। आश्रम में रहकर घर खेती करने हम नहीं जाएंगे कि चलो थोड़ा व्यवसाय करके आते हैं, बिजनेस में लॉस हो गया है। हमारा कर्तव्य यही है कि मंदिर में मंदिर के अनुसार जीना है, मंदिर के कार्य प्रणाली को देखना है। ब्रह्मचारी जब हो गए तो यहाँ के ही अनुसार चलना है। कभी कभी छुट्टी लेकर कोई जाता जा रहे हैं बिजनेस संभालने के लिए, तो खेती करने के लिए, तो उसमें द्वंद्व में पड़ जाएगा। एक नाव पर सवारी करना चाहिए, दो नाव पर चढ़ेगा तो बीच में ही ये हो जाएगा। तो हम एक नाव पर सवारी किए हैं तो इसी में रहना है, दो नाव पर दो पांव रखेंगे तो गिर जाएंगे ना बीच में।
हरे महाराज, ये जब हम भगवद गीता वितरण करते हैं तो ट्रेडिशनली ऐसा है कि भगवद गीता को पूजा किया जाता है घर में, जैसे आप कह रहे थे, और हम चप्पल वगैरह स्पर्श नहीं करते, स्नान करके गीता का अध्ययन करते हैं। तो अब हमको गीता वितरण करना होता है तो सब तरह से कई जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे स्वच्छता ना हो, और कई जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो बड़ा इसका मजाक उड़ाते हैं, और हमको तो किताब वितरण करना है तो हम बोलते भैया ये समय ऐसा है अगर हम नियमों को पालन करते रहे तो फिर लोगों तक गीता का ज्ञान भी नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में किस प्रकार से हम उनको समझा सकते हैं और अपने आप को भी, क्योंकि कई बार हमको भी बुरा लगता है कि मैं इस प्रकार से भगवद्गीता को ट्रीट कर रहा हूँ।
बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं कि भगवद्गीता मतलब बहुत दिव्य ग्रंथ है, भगवान का साहित्यिक स्वरूप है। हम प्रचार करने जाते जूते पहन करके, या बाहर के लोग आते हैं तो उनका हाथ पता नहीं कैसे वो भी टच करते हैं, तो प्रचार के उद्देश्य से तो करना ही है। जैसे बनिए के दुकान में हम गुड़ लाने जाते हैं, मिश्री लाने जाते हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए या भोग लगाने के लिए, तो बनिया उसी में से खाता भी है। लड़के से बोले गुड़ लेकर आओ दुकान में से, तो हो सकता है लड़का जूठे हाथ से भी निकाल कर लाया होगा, लेकिन वहीं से हम बोलते हैं कि तो मिश्री दीजिए हनुमान जी को चढ़ाने के लिए या गुड़, तो वही हम लेकर चढ़ाते हैं, उसके तराजू पर आकर शुद्ध हो जाता है। अब बनिए के यहाँ जो सामान है तो उसमें से वो यूज करता ही होगा ना, ऐसा नहीं कि वो बहुत भावना से रखा रहता है, लेकिन तराजू पर आकर शुद्ध हो जाता है। उसी तरह कुछ चीजें हैं वो उसको प्रचार में लेने से कुछ कमियां दूर हो जाती हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं तो कुछ कुछ चीजों को माफ कर देते हैं। जैसे प्रचार के लिए हम लोग जाते ही हैं तो टेबल लगाते हैं तो जूता पहने ही रहते हैं, या लोगों को दिखाते हैं तो बाहर वालों को पता नहीं पब्लिक बाथरूम से आए होंगे तो हाथ धोए होंगे कि नहीं धोए होंगे, आजकल शौचालयों में कहीं कहीं पानी नहीं है, यूरिनल में गए तो हाथ वो धोया होगा कि नहीं धोया होगा, तो टच करेगा तो हम कहेंगे कि हाथ धोए हो, हाथ सही है नहीं तो पानी से हाथ धो लो, तो पानी रखना पड़ेगा दो चार बाल्टी कि जितने लोग आए उनको हाथ धुलाइए फिर बोले हाँ पकड़िए, तो कोई कोई हट हम जा रहे हैं, तो इतना तुम्हारा प्रोसेस है। तो कुछ चीजें हैं वो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं, है कि नहीं, भगवद गीता भगवान का ही स्वरूप है, वो शुद्ध कर देंगे। वैसे लोगों को भी पतित पावन है, कैसे सूरज की किरणें गटर पर भी गिरती हैं, मलमूत्र पर भी गिरती हैं, खारे पानी को भी शुद्ध कर देती हैं, छारम जलम बारी मुचह पिबंती तदेव कृत्वा मधुरम बमंती, तो भगवद गीता भी सूरज के समान है, ऐसे लोगों को शुद्ध कर देती है। जैसे सूरज खारे जल को भी पी करके अब मधुर जल के रूप में बमंती बमन कर देते हैं, छारम जलम बारी मुचह पिबंती तदेव कृत्वा मधुरम बमंती, हम पीने जाएंगे तो मुंह खारा हो जाएगा, गटर का पानी हो चाहे मलमूत्र हो चाहे सड़ा गला गटर में कीचड़ हो, सूरज उसको वाष्पित करके शुद्ध बनाकर उसको फिल्टर कर देते हैं, नहीं? समुद्र का पानी ही तो फिल्टर होता है और मधुर बन जाता है फिर वर्षा के रूप में। तो भगवद गीता में भी सामर्थ्य है कि ऐसे लोगों को पवित्र कर देती है, और वो पढ़ेगा तो और पवित्र हो जाएगा, उसका हृदय का मार्जन हो जाएगा। तो कुछ चीजें प्रचार में तो हम लोगों को कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है ना, कि आया है तो कैसा हाथ है कैसा नहीं है, तो ये भी वो शुद्ध हो जाएगा। आए तो पूछ सकते हैं कि आपका हाथ शुद्ध है, हाथ शुद्ध है, बाथरूम गए होंगे हाथ धोए कि नहीं। ज्यादातर लोग तो महाराष्ट्र में मैं देखा बहुत लोग एटिकेट फॉलो करते हैं, हाथ शुद्ध होगा तभी वो टच करते हैं, तो बोलेंगे हमारा हाथ ठीक नहीं है, तो कुछ पानी रखना चाहिए बोतल में या कुछ कि नहीं, तो आपका हाथ ठीक नहीं तो धो लीजिए यदि कर लीजिए। और जूता का जहां तक सवाल है तो जूता निकाल कर बगल में रख दीजिए, है कि नहीं, आज तो खड़ाऊ पहनिए लकड़ी का, आजकल तो लकड़ी का भी लोग पहन रहे हैं ना, बहुत लोग पहन रहे हैं, आज तो जूता बगल में रख दीजिए, कुछ चीजें हैं जिसको व्यवहारिक में करना बड़ा कठिन है कि नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना हम लोग प्रयास करते हैं। क्या उत्तर देते, आपका क्या सुझाव है जी, आपका क्या मंतव्य है?
जो बताया आपने महाराज सही बताया, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो करना चाहिए।
कुछ चीज है, और सब कुछ देखने जाएंगे तो फिर प्रचार ही नहीं हो पाएगा। हम भीटी में टेबल लगाए थे तो एक आदमी आकर कहा कि तुम लोग भगवद गीता को भी रोड पर ला दिया, व्यवसाय करने लगा तो बहुत जोर जोर से बात, तुम लोग भगवद गीता को भी रोड पर ला दिया, व्यवसाय करने लगा है। तो मैं कहा कि टूथपेस्ट के लिए कितना विज्ञापन होता है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश का उतना कितना, या साबुन का कितना विज्ञापन होता है बिलबोर्ड में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में। तो अच्छा चीज है तो इसका भी विज्ञापन होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए कि नहीं, खूब प्रचार होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अरे तो ये लोग व्यवसाय कर रहे हैं, रोड पर ला दिए भगवद गीता। केवल मंदिर में भगवद गीता रहती तो इतना नहीं प्रचार होता है कि नहीं, मंदिर में तिजोरी में बंद करके रखते तो इतना कहाँ प्रचार होता है। तो प्रचार के लिए कुछ चीजों को तो कंप्रोमाइज करना है। धन्यवाद। ठीक है राघव प्रभु, मैं राघव प्रभु हैं, राघव गोस्वामी प्रभु, और अब संन्यास के लिए कल बात हुई थी, गिरिराज महाराज से हम लोग गए थे बात करने के लिए, तो गिरिराज महाराज ने ओके कर दिया है। तो फ्यूचर सन्यासी हैं राघव प्रभु, और हमेशा ट्रैवलिंग में रहते हैं। बहुत धन्यवाद है। नहीं बताया तभी ना आप, आपको लोग जानेंगे तो आगे आपको यहाँ आएंगे तो थोड़ा आपको कोऑपरेट करेंगे लोग। अब आप तो बताएंगे नहीं कि मैं सन्यास कैंडिडेट हूँ, तो ये लोग जान गए तो आपको इनवाइट कर सकते हैं क्लास के लिए, फीडबैक लिखना होता अच्छा से लिख सकते हैं। हाँ कल डिस्कस हम लोग मीटिंग किए थे गिरिराज महाराज से, तो महाराज ठीक है। बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की
जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद महाराज आपका ये मधुर प्रवचन। मैं सोच रहा था कि ये बिल्कुल सही श्लोक है, श्रीमद् भागवत के श्लोकों में अभी भगवद गीता का वर्णन आ रहा है और भगवद गीता मैराथन में चल रहा है, और उसमें आपने इतना सुंदर भगवद गीता की महिमा सुनाई जो हमें आज प्रैक्टिकली हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उसे अपना सकते हैं, और प्रश्न में ऐसे ही मौलिक आया है। तो आइए हम सब मिलकर फिर से हार्दिक अभिनंदन करेंगे महाराज का, तीन बार हरि बोल कर हरि बोल। हम प्रार्थना करते हैं महाराज से कि आप बार बार यहाँ पर आइए और आपके मधुर वचन से हमें पवित्र कीजिए। श्री प्रभुपाद की जाय। परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज की जाय। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की जाय।